ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा WTSA 2024 का उद्घाटन किया। WTSA संयुक्त राष्ट्र की डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा के मानक कार्यों के लिए संचालन का सम्मेलन है। इसका आयोजन हर चार वर्ष में किया जाता है। भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसका आयोजन पहली बार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री इंडियन मोबाइल कांग्रेस का भी उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है। निर्वाचन आयोग आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। आयोग दोपहर बाद 3:30 बजे नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में चुनावों की तारीखों की जानकारी देगा। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल अगले महीने की 26 तारीख को समाप्त हो रहा है, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को समाप्त होगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को आमंत्रित किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उपराज्यपाल को सौंपे एक पत्र में कहा था कि श्री अब्दुल्ला को विधानमंडल का नेता चुना गया है। इसके बाद उपराज्यपाल ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आमंत्रित किया। शपथ ग्रहण समारोह कल श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और अल्जीरिया के बीच बेहतर आर्थिक सहयोग का आह्वान किया है। अल्जीयर्स में अल्जीरिया भारत आर्थिक मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा सहयोग के एक नए युग की दिशा में नई गति प्रदान करने पर बल दिया। राष्ट्रपति मुर्मू तीन देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा के अंतर्गत अल्जीयर्स में हैं। वे कल मॉरिटानिया के लिए रवाना होंगी। भारत ने कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर सहित 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इन राजनयिकों से 19 अक्टूबर से पहले भारत छोड़ने को कहा गया है। भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त और अन्य अधिकारियों को ये कहते हुए वापस बुला लिया है कि उसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कनाडा सरकार की प्रतिबद्धता पर भरोसा नहीं है। कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त को कल नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों तथा अधिकारियों को आधारहीन निशाना बनाना अस्वीकार्य है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज 2 दिन की यात्रा पर पाकिस्तान जा रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा है कि उनकी पाकिस्तान यात्रा का एक बहुपक्षीय कार्यक्रम के लिए है और उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता से इनकार कर दिया। शंघाई सहयोग संगठन एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें 9 देश शामिल हैं। ये संगठन सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास को मजबूत करने, राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति में उनके प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत और कोलंबिया के बीच दृश्य श्रव्य सह निर्माण समझौते पर आज नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस समझौते से दोनों देशों के निर्माताओं को सह निर्माण के लिए अपने रचनात्मक, कलात्मक, तकनीकी, वित्तीय और विपणन संसाधनों को एकत्रित करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में भारत की 16 देशों के साथ सह निर्माण संधियां हैं। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने वायु गुणवत्ता सूचकांक के 234 पर पहुंचने के बाद पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप के पहले चरण को लागू कर दिया है। ग्रैप के अनुसार 27 सूत्रीय कार्ययोजना आज से पूरे NCR में लागू की जा रही है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन के दौरान अलग अलग स्थानों पर बारिश हो सकती है। सांगली और सोलापुर में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्वकप में न्यूजीलैंड ने कल रात दुबई में पाकिस्तान को 54 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ग्रुप ए से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। इसके साथ ही भारतीय टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो गई। भारत 4 अंक प्राप्त करके ग्रुप एक में तीसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।